समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
आज सवेरे में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है दोस्तों। आपकी प्रिय समाचार पत्रिका में हम आपको देंगे देश और दुनिया के ताजा समाचार, महानगरों का जानेंगे हाल, मौसम की होगी बातें, इतिहास में दर्ज कुछ ऐसी घटनाओं का होगा जिक्र जो बनाते हैं आज की इस तारीख को जरा खास, और फिर हम याद करेंगे दोस्तों कुछ ऐसी जानी मानी हस्तियों को है जिनका रिश्ता आज की इस तारीख से। और आज के इस अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा और मेरे साथ हैं शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
नमस्कार मुनीश एंड टू आवर लिसनर्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी, वेल अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स। वी आर बिगिनिंग नाउ विद आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, एंड यस मुनीश टोल्ड अस अबाउट द प्रोग्राम, सो वील हैव हेडलाइंस फर्स्ट, मेट्रो सिटी अपडेट्स देयर एंड द हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टुडे। टुडे इज 6th of April 2026, so this is our way of telling you all listeners to stay tuned till the very end of the program. First Munish, let's now begin with the headlines.
Bilkul ho jaiye ek naye din ka samna karne ke liye taza samacharon ke sath ekdam taiyar। सरकार ने 5 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की बिक्री को बढ़ा दिया है। वैध पहचान पत्र दिखाने पर एलपीजी वितरण काउंटर पर ये सिलेंडर उपलब्ध होंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया है कि बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आपूर्ति बढ़ाने के बाद 23 मार्च से 5 किलो के लगभग 6,60,000 सिलेंडरों की बिक्री हो चुकी है। इन सिलेंडरों की कीमत बाजार दर पर रखी गई है और इनकी खरीद के लिए किसी पते प्रमाण की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि एलपीजी वितरण केंद्र पर इन सिलेंडरों की कमी नहीं है। 4 अप्रैल को 51 लाख से अधिक घरेलू सिलेंडर्स की आपूर्ति की गई और कुल मांग के 95% की ऑनलाइन बुकिंग हुई। जमाखोरी कालाबाजारी को रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं और मार्च से अब तक 50,000 एलपीजी सिलेंडर जब्त भी किए गए हैं।
Amid the ongoing war in West Asia, Air India has suspended its flights to Israel. An Air India official said that the airline has suspended flights on the New Delhi-Tel Aviv route till May 31st. Most of the leading airlines have suspended their operations on the Tel Aviv route, with only Israeli carriers operating under severe restrictions. The suspension of flights has caused major worries among more than 40,000 Indians living in Israel who wish to travel to India for personal and professional reasons or even to escape the escalating tensions in the region. Indians looking to leave Israel have to go through Jordan or Egypt by entering the two countries through the land crossings. The Indian mission in Tel Aviv has been assisting those looking to travel through various means.
भारत ने हाल की बाढ़ और भूकंप की कठिन स्थिति से जूझ रहे अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि राहत सामग्री में किचन सेट, स्वास्थ्य किट, प्लास्टिक शीट, स्लीपिंग बैग और अन्य जरूरी चीजें शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि भारत संकट की घड़ी में अफगानिस्तान के लोगों के साथ है और हर तरह की मानवीय सहायता और सहयोग उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
So listeners, now let us tell you about the Grand Yoga Festival. And only 74 days remain for the International Day of Yoga. The Ministry of Ayush has organized a grand yoga festival tomorrow at Lunar in Vidarbh region to promote the practice of yoga. Union Minister of Ayush, Pratap Rao Jadhav, appealed to citizens to participate in large numbers during a press conference held in Buldhana. As part of the Yoga Mahotsav 2026 initiative, The ministry is conducting a 100-day campaign leading up to International Yoga Day. So under this initiative, the event at Chhatrapati Shivaji Maharaj Udyan near Lunar Lake is expected to witness participation from around 7,000 yoga practitioners, Munish, so many. The minister also informed that an attempt will be made to enter the Asian Book of Records by performing Vichasana, Trikonasana simultaneously with the highest number of participants.
और शगुन अब बात मैं बताऊंगा आपको एक और महोत्सव की भारत जनजातीय महोत्सव 2026 जो नई दिल्ली में एक भव्य समारोह के साथ हो गया संपन्न 19 दिन के इस महोत्सव के दौरान जनजातीय संस्कृति शिल्प कौशल और उद्यमशीलता का प्रदर्शन किया गया समापन समारोह में 10 श्रेणियों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जनजातीय शिल्पकारों को सम्मानित भी किया गया और इन श्रेणियों में मिट्टी के बर्तन बेंत और बांस आभूषण व्यंजन उपहार और अन्य सामान धातु प्राकृतिक वस्तुएं चित्रकला वस्त्र और वन धन विकास केंद्र शामिल थे
The Indian Navy's frontline warship INS Srikhand arrived at Dar es Salaam in Tanzania as part of its deployment in the Southwest Indian Ocean region. The visit is aimed at strengthening cooperation and friendly relations between India and Tanzania. In a statement, Ministry of Defence said that the engagements during the port call include professional interactions and joint training activities with Tanzanian Navy. The training will enhance interoperability and maritime cooperation.
और दोस्तों अब नोट कीजिए आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में नया आयकर अधिनियम 2025 पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के संयुक्त सचिव पीताम्बर दास और आर्थिक मामलों के विश्लेषक शरद कोहली इस परिचर्चा में शामिल होंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे कार्यक्रम के दौरान अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो उसके लिए नंबर है 0112331048 और व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9289094044 इस पर भी आप सवाल पूछ सकते हैं या #AskAIR के साथ एक्स पर भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं
So, for listeners to note another thing now, as part of our series, People's Padma on Akashvani, in our upcoming episode, we speak to Mr. Nilesh Vinod Chandra Mandlewala. He has contributed towards creating awareness and promoting organ donation. Mr. Nilesh Vinod Chandra Mandlewala will be honored with the prestigious Padma Shri for his contribution in the field of social work.
मैंने जब ये रिसर्च किया तभी मुझे मालूम पड़ा कि ब्रेन डेड व्यक्ति के अंगों के दान से उनको किडनी का दान हो सकता है आप जब ये ईश्वरीय कार्य करते हो जो दो व्यक्ति डायलिसिस पे जीवन जी रहा है तो उनको नया जीवन मिलेगा डायलिसिस की जो पीड़ा है उसमें से उसको मुक्ति मिलेगी
So to listen to the conversation, tune into 100.1 Akashvani Gold today morning at 9:10 a.m. You can also listen to it on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel.
और बात अब क्रिकेट की आईपीएल क्रिकेट में कल रात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 43 रन से हरा दिया बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 250 रन बनाए थे और फिर जवाब में चेन्नई की पूरी टीम 207 रन पर दोस्तों सिमट गई टिम डेविड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला होगा पंजाब किंग्स से और ये मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा और दोस्तों अब रुख करते हैं महानगरों का और जानते हैं क्या कुछ है खास वहां तो शगुन सबसे पहले बात दिल्ली की
श्योरली प्लीज बिगिन
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने कल सरकारी अस्पतालों की मुफ्त दवाओं की अवैध हेराफेरी करने वाले एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास से अवैध वाहन के साथ एंटीबायोटिक्स और जीवन रक्षक दवाएं भी बड़ी मात्रा में बरामद की गई हैं और पुलिस का कहना है कि इस मामले में आगे जांच अभी जारी है इसके अलावा पुलिस ने दिल्ली में नकली दवाइयां बनाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ कर शाहदरा से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास से 12 लाख से ज्यादा की नकली दवाइयां जब्त की गई हैं और वहीं अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त आदित्य गौतम ने बताया कि आरोपी वर्ष 2011-12 से नकली दवाओं का ये काम कर रहे थे। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने कल अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निवेश संगठित साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 11 आरोपियों समेत मुख्य आरोपी को कोलकाता हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास से 48 मोबाइल फोन, 258 सिम कार्ड, कई एटीएम कार्ड, चेकबुक, 4 लैपटॉप, बैंकिंग और केवाईसी दस्तावेज और साथ में 19 लाख रुपए की करेंसी जब्त की गई। पुलिस ने बताया कि मामले में जांच अभी जारी है और दिल्ली सरकार ने दोस्तों गोदामों से सीधे एलपीजी सिलेंडर की बिक्री पर लगा दी है पूरी तरह से रोक। तेल विपणन कंपनियों ने सभी वितरकों को अब ये स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि इस तरह कोई भी बिक्री गैर कानूनी मानी जाएगी और इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार ने रसोई गैस को आम लोगों के लिए, खासकर उनके लिए जिनके पास समुचित पते का प्रमाण नहीं है, ज्यादा सुलभ बनाने के लिए सप्लाई को पूरे शहर में 5 किलो के सिलेंडर की उपलब्धता बढ़ा दी है। प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड के बिक्री केन्द्रों पर 11 हेल्पलाइन डेस्क भी बनाए गए हैं और जमाखोरी और काला बाजारी की रोकथाम के लिए बनाया गया है कंट्रोल रूम, जिसका हेल्पलाइन नंबर दोस्तों आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ये नंबर है 0112337983 और 0118383825।
So now let's head to Chennai, Manish. IIT Madras is developing a new technology to reduce noise at busy city junctions, and this project is based on IIT Madras's recent city-wide noise study presented at the Tamil Nadu Climate Summit 4.0. So this system uses acoustic resonators and barriers also to absorb and block sound. Professor S.M. Shivanagendra, Department of Civil Engineering, IIT Madras, says the goal is to cut noise levels by 30 to 40 decibels, and for this purpose, the system will use materials like porous structures, PVC-based resonators and plants to reduce sound. The system may be installed at noisy areas, one of which can be Cancer Institute Junction in Chennai.
A much-needed step indeed, Shagun, because noise pollution, like all the other forms of pollution, is a big nuisance indeed.
It's actually correct, and well, Chennai should look forward to it now, right?
Yes. So, some more news from Chennai?
No.
Or shall we move to Mumbai?
Please move to Mumbai, Manish.
जी, मुंबई से जो खबर आ रही है, हमें पता लगता है उससे कि महाराष्ट्र ने तटीय सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए समुद्री क्षेत्र जागरूकता का एक ऐप लॉन्च किया है। दरअसल भारतीय नौसेना और आईआईटी मद्रास के सहयोग से विकसित यह ऐप छोटी नौकाओं पर नजर रखने में सहायक है, मछुआरों और नौका संचालकों को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने के लिए इस ऐप से लैस फोन दिए जाएंगे। इसका मकसद 2008 के हमलों जैसी घटनाओं को रोकना है। परीक्षण के दौरान इस ऐप ने 100 नौकाओं पर नजर रखी। निगरानी माहिम सागरी पुलिस स्टेशन से की जा रही है और इसके विस्तार की भी योजना है। और एक और खबर मुंबई से, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर मॉस्को सरकार के साथ 10 साल का एक समझौता किया है। ये साझेदारी शहरी विकास, अवसंरचना, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास पर केंद्रित होगी।
सो वी मूव टू मुंबई, इन अदर वर्ड्स वी हेडेड टू मुंबई, नाउ लेट्स हेड टू बेंगलुरु।
यस, बेंगलुरु।
द फर्स्ट अपडेट फ्रॉम बेंगलुरु। Bengaluru City, Central City Corporation Commissioner Rajendra Cholan has directed officials to work in coordination for Census 2027 and avoid any lapses during a meeting held in Bengaluru. 6 training centres have been set up across assembly constituencies to train enumerators with supervisory teams led by revenue officers at each centre. Training will be held from today till 8th of this month, 8th of April, and ahead of the survey scheduled from April 16 to May 15, 2026. So attendance is mandatory, and strict action including legal proceedings, suspension and loss of pay will be taken against staff who fail to report for duty. So they should report to duty. And another update from Bengaluru. So amid summer, of course it's summertime, 324 villages in Karnataka are facing drinking water scarcity due to drying sources and reduced borewell yield. So Rural Development Minister Priyank Kharge said water is being supplied to affected villages through tankers and leased private borewells, with priority given to borewell sourcing. The government is also conducting water quality checks, setting up control rooms and also deploying rapid response teams while taking measures like borewell flushing and limited new drilling. So these two updates I had from Bengaluru. Over to you, Manish.
जी हाँ, बात करते हैं कोलकाता की, जहाँ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनावों से पहले राज्य भर में तलाशी अभियान जो है वो चल रहा है। इसके दौरान चुनाव आयोग ने 319 करोड़ रुपए की अवैध वस्तुएं वहां जब्त की हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार जब्त की गई चीजों में 55 करोड़ रुपए की शराब, 39 करोड़ रुपए की कीमती धातुएं और 150 करोड़ रुपए के उपहार शामिल हैं। आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं कि इन तलाशी अभियानों के दौरान आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा शिकायतों के निवारण के लिए जिला स्तरीय शिकायत निवारण समितियां भी गठित की गई हैं।
सो हेडिंग नाउ टू हैदराबाद, द तेलंगाना जुडिशरी मार्क्ड अ हिस्टोरिक माइलस्टोन विद द फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी फॉर द हाई कोर्ट जोन 2 एट बुडवेल राजेंद्र नगर यस्टरडे। Supreme Court Justice Suryakant performed the honours in the presence of Chief Minister A. Revanth Reddy and several distinguished judges from both the Supreme Court and High Court. So this ambitious project, this spans approximately 100 acres and this aims to modernise the state's legal infrastructure with advanced courtrooms. Also, it will have digital libraries, efficient administrative wings. While the existing High Court remains a cherished heritage landmark, of course, the new complex addresses future expansion needs and incorporates cutting-edge technology to accelerate the delivery of justice.
Well, no wonder. That's why, you know, Hyderabad has always been called lovingly Cyberabad.
Right, you're right.
Rajdhani mein ab hum baat karte hain mausam ki. Darasal to sabse pehle baat Delhi ke mausam ki.
Sure.
राजधानी में आज बादल छाए रहने की संभावना है दोस्तों। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रह सकता है 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जबकि मुंबई में भी बादल छाए रहने की संभावना नजर आ रही है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम रह सकता है 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जबकि कोलकाता में आंशिक रूप से बादल रह सकते हैं और गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। तापमान रह सकता है 31 डिग्री अधिकतम और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास।
Now, if we'll talk about Chennai, it is expected to have partly cloudy sky today. The minimum temperature was around 27 degrees Celsius and maximum will be around 35 degrees in Chennai. Bengaluru now, it is expected to have a thunderstorm with rain there. The minimum temperature was 23 degrees Celsius and maximum will be around 34 degrees Celsius. And I told you about the thunderstorm as well. Hyderabad is expected to have rain or thunder showers, and they would occur towards evening or night. The temperature, minimum temperature, will be around 25 degrees Celsius and maximum in Hyderabad, the temperature will be around 36 degrees Celsius. Summertime.
दोस्तों आइए बात करते हैं उन बातों की जो बना देती हैं आज की इस तारीख को जरा खास, और हमें इसमें सबसे पहले मैं शगुन से चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास जो जानकारियां हैं वो तो दरअसल पिछली सदी से शुरू होती हैं, यानी 20वीं सदी से, लेकिन मैं देख रहा हूं उनके पास है बहुत बहुत पुराना इतिहास।
एग्जैक्टली मुनीश, वील टेक आर लिसनर्स वे बैक इन टाइम। इन 1320 स्कॉटलैंड reaffirmed its independence from England by signing the Declaration of Arbroath, a letter sent to Pope John 22. In 1896, now Munish, the first modern Olympic Games officially opened in Athens, Greece, marking the revival of the ancient tradition after a gap of 1500 years there. In 1909, American explorer Robert Peary allegedly reached the North Pole, a feat that made him the first person to do so, though the claim was later contested by historians.
और दोस्तों 1930 में यही थी वो तारीख, यानी 6 अप्रैल, जब महात्मा गांधी ने अपनी स्वतंत्र भारत की मांग पर जोर देने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया था। और 1942 में इसी तारीख को जापान के लड़ाकू विमानों ने पहली बार भारतीय इलाके में बमबारी की।
गोइंग little back, not a little, quite a bit. In 1917, the United States formally declared war on Germany, officially entering World War I on the side of the Allied powers. And in 1924 now, a team of 8 aviators from the United States Army Air Service began the first aerial circumnavigation of the world, departing from Seattle. In 1919, Mahatma Gandhi launched the Rowlatt Satyagraha, a nationwide hartal, non-violent protest against the repressive Rowlatt Act passed by the British.
और 1982 में दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित उपनिवेश फॉकलैंड पर अर्जेंटीना ने कर लिया था कब्जा. और दोस्तों अब याद करते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों को है जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन. तो सबसे पहले हम याद कर रहे हैं आज महाशय राजपाल को, जो महान हिंदी सेवी थे, लाहौर के रहने वाले थे. लाहौर में उनका एक प्रकाशन संस्थान था और वो खुद भी एक बड़े ही विद्वान व्यक्ति थे. पक्के आर्य समाजी थे और विभिन्न मतों का वो सम्मान करते थे और अपनी पुस्तकों में वो अपने तर्क पेश करते थे. अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने की वजह से उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ी. देश के बंटवारे के बाद उनका परिवार दिल्ली चला आया था और उनका जो प्रकाशन है राजपाल प्रकाशन, वो आज भी सक्रिय है.
So now we will dive into the artistic process of one of history's most beloved and influential artists, a true titan of the Italian Renaissance, Raphael. He matched the ambition with lyricism to create works with both intellectual heft and also emotional depth, a necessary skill in the complex political landscape of the Renaissance courts. And he was regarded as the pinnacle of artistic perfection for centuries, even after his death.
और दोस्तों आज जयंती है जिगर मुरादाबादी साहब की, जो 20वीं सदी के सबसे मशहूर उर्दू कवि और उर्दू गजल के एक बड़े हस्ताक्षर रहे. उनकी बहुत अधिक प्रशंसित चर्चित एक जो उनका कविता संग्रह आतिश गुल, उसके लिए 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया था. उनका एक बड़ा मशहूर सा शेर मुझे याद आ रहा है शगुन. उन्होंने कहा था, मेरा कमाल शेर बस इतना ही है जिगर, मेरा कमाल शेर बस इतना ही है जिगर, आप हम पे छा गए और हम जमाने पे छा गए. और उन्होंने कहा था, आदमी आदमी से मिलता है दिल, मगर कम किसी से मिलता है, भूल जाता हूं मैं सितम उसके, वो कुछ इस सादगी से मिलता है. आज क्या बात है, फूलों का रंग तेरी हंसी से मिलता है, सिलसिला फितना कयामत का तेरी खुशकामती से मिलता है, मिलके भी जो कभी नहीं मिलता, टूट कर दिल फिर उसी से मिलता है.
That's true. And our listeners would have definitely loved.
बिल्कुल. तो आज आप भी उनके जरा कुछ और जो शेर हैं, उनकी जो और रचना है, उनको तलाशिए और पढ़िए जिगर साहब की.
I sure will, and our listeners will also do that. जी. Great. So today, listeners, we are also remembering Merle Haggard, one of country music's most versatile artists, and style was honky tonk, blues, jazz, pop and folk. He stands as the single most influential singer songwriter in country music history, and he has created some of the most beautiful songs, Silver Wings, and It's Been a Great Afternoon as well. The song which I have so chosen is another one, so let's listen into that. Merle Haggard.
Let him say the song I used to hear, made my old memories come alive. Take me away and turn back the years. Say
this great song in his voice. Well, his repertory ranged wide, aching ballads, frisky narratives as well, and other reflections and political commentaries as well, and homages as well.
और दोस्तों आज है जयंती सुचित्रा सेन की, जो हिंदी और बांग्ला फिल्मों की एक मशहूर अभिनेत्री थी। वो पहली बांग्ला अभिनेत्री रही जिनको किसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में पुरस्कार मिला। उत्तम कुमार के साथ अभिनय करने के चलते सारे पश्चिम बंगाल में बेहद लोकप्रिय हुई। हिंदी फिल्मों में भी फिर उन्होंने काम किया और उत्तम कुमार और सुचित्रा सेन की जोड़ी दरअसल आज भी बांग्ला सिनेमा की एक बड़ी मशहूर जोड़ी जो है वो मानी जाती है। सात पाके बांधा के लिए 1963 में मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। सुचित्रा सेन ने 1955 में फिल्म देवदास, जो पुरानी देवदास फिल्म थी, उसमें पारो का किरदार निभाया था और ये उनकी पहली हिंदी फिल्म भी थी। लोगों की नजरों से दूर और एकांत में रहने की अपनी ख्वाहिश के चलते 2005 में उन्होंने दादा साहब फाल्के जैसा महान पुरस्कार लेने से भी इनकार कर दिया था, क्योंकि वो सार्वजनिक जीवन में दरअसल उस समय आना नहीं चाहती थी। और उनकी फिल्म आंधी एक बहुत ही मशहूर हुई, जिसको शुरू में रोका गया था राजनीतिक कारणों से और फिर 1977 में उस पर से रोक हटा ली गई थी। और फिल्मों से उन्होंने जब संन्यास ले लिया तो लोगों से वो दूर ही रहीं और अपना समय उन्होंने रामकृष्ण मिशन के लिए समर्पित कर दिया। और देवी चौधराइन के लिए सत्यजीत रे का एक ऑफर उन्हें मिला, उसके लिए भी उन्होंने इनकार किया और लेकिन फिर सत्यजीत रे ने वो फिल्म कभी बनाई नहीं। बहरहाल ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आज याद आती हैं जब हम उन्हें याद करते हैं। 1963 में फिल्म ममता और 76 में फिल्म आंधी के लिए वो फिल्म फेयर के लिए नामित की गई थी और 1972 में भारत सरकार ने उन्हें सम्मानित किया था पद्मश्री से और 2012 में बंगो विभूषण पुरस्कार उन्हें दिया था पश्चिम बंगाल सरकार ने। तो मैं समझता हूं शगुन क्यों ना सुना जाए उनकी जो वो फिल्म है देवदास, उससे उनका एक बड़ा ही चर्चित संवाद।
डेफिनेटली
उस रात की बात तुझे याद नहीं क्या?
हाँ, और वो चिट्ठी भी जो तुमने लिखी है।
वो खत मैंने जल्दी नहीं लिख दिया था, न जाने मुझे क्या हो गया था, सोचने की ताकत भी नहीं।
चुप रहो, मैं वो सब सुनना नहीं चाहती।
सुनो भारती, जैसे कैसे भी होगा मैं अपने माता पिता को राजी कर लूंगा।
तुम्हारे माता पिता हैं और मेरे नहीं है, उनके राजी होने या न होने की जरूरत नहीं है।
क्यों नहीं, लेकिन उन्हें तो इस बात से इनकार नहीं है ना?
बिल्कुल इनकार है, जाने दो मुझे, रास्ता छोड़ दो।
पारो
expresses so many emotions and well, we are remembering Suchitra Sen, the legendary actress, and we also call her Mahanayika of Bengali cinema. And you were telling about how she paired with the most enduring pairs with Uttam Kumar. She formed one of Indian cinema's most enduring pairs with Uttam Kumar and they starred in 30 of her 60 films.
बिल्कुल, और जो उनकी खास फिल्में दरअसल शगुन रही, हिंदी में जब हम याद करें तो याद आती है देवदास के बाद बम्बई का बाबू, ममता और आंधी। तो आइए सुनते हैं कुछ उनके ऐसे गीत जिन्हें उनके चाहने वाले आज भी गुनगुनाते हैं अक्सर।
देखने में भूला है दिल का चन्नन्ना, बम्बई से आया है बाबू चन्नन्ना। गली गली गांव की रे जागी है सोते सोते, गली गली गांव की रे जागी है सोते सोते। फिर से जागे है ऐसा, फिर से जागे है ऐसा, हम छोटे छोटे संग लेके आया है मेरा बचपना, बम्बई से आया है बाबू चन्नन्ना। रही न रही हम
तो दोस्तों हम याद कर रहे हैं आज सुचित्रा सेन को और उनके हमने ये यादगार गीत भी सुने और
वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग टैमी वनेट वन ऑफ द क्रिएटिव यूनिक एंड डिफाइनिंग स्टाइलिस्ट एंड स्ट्रांग राइटर्स आर्टिकुलेटिंग वुमेन्स पर्सपेक्टिव्स विद एन ऑटोबायोग्राफिकल स्लांट दैट मेड हर लाइफ वेरी इंटरेस्टिंग एंड शी हैड बिग सिटीज ड्रीम्स विद सो मेनी सॉन्ग्स टू हर नेम
And I watched our little girl outside at play with the little
और दोस्तों अब इजाजत दीजिए कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की शगुन चोपड़ा और मुनीश शर्मा को
वी थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन एंड वी होप यू हैव अ सुपर्ब डे अहेड
नमस्कार